एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम हेनरी डेविड थोरो की बात कर रहे हैं, एक ऐसा नाम जो अक्सर सादगी, प्रकृति और सरकार के विरोध से जुड़ा सुनाई देता है।
हाँ बिल्कुल,
उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि अपने विचारों को जीने की भी कोशिश की। पर यह जानना दिलचस्प है कि 19वीं सदी के इस अमेरिकी विचारक की बातें आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं?
सही सवाल है।
तो चलिए आज हमें मिले स्रोतों के आधार पर थोरो की दुनिया, उनके विचार और उनकी जो स्थायी विरासत है उसमें थोड़ा गहरे उतरते हैं।
बिल्कुल, थोरो इसीलिए इतने दिलचस्प हैं क्योंकि उन्होंने वो सवाल छेड़े जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। मतलब, क्या हमें कम चीजों के साथ ज्यादा संतुष्ट जीवन जीना चाहिए?
हाँ?
अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमारी क्या जिम्मेदारी है? और ये जो प्रकृति है, क्या उससे हमारा रिश्ता सिर्फ इस्तेमाल का है या कुछ और गहरा?
और उन्होंने सिर्फ जवाब दिए नहीं,
नहीं जवाब दिए नहीं, बल्कि वॉल्डन तालाब के किनारे जाकर उन्हें जीने का एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट।
तो उनके इस प्रयोग को समझने के लिए मुझे लगता है पहले उस समय को समझना जरूरी है। थोरो किस तरह के अमेरिका में जी रहे थे, मतलब माहौल कैसा था?
देखिए, वो 19वीं सदी का मध्य था। अमेरिका ना बहुत तेजी से बदल रहा था। एक तरफ तो औद्योगिक क्रांति थी, शहर बन रहे थे, कारखाने लग रहे थे, जीवन का पूरा ढंग बदल रहा था।
हाँ, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
हाँ, और दूसरी तरफ एक मजहबी लहर थी जिसे दूसरा महान जागरण कहते हैं। वो लोगों की आस्थाओं को, उनके विश्वासों को एक नया रूप दे रही थी।
अच्छा।
लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था उस वक्त, वो था दास प्रथा, गुलामी। उसको खत्म करने का आंदोलन, एबोलिशनिज्म जिसे कहते हैं, वो जोर पकड़ रहा था।
और देश बंट रहा था इस पर।
हाँ बिल्कुल, देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। और साथ ही एक और सोच थी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी।
मैनिफेस्ट डेस्टिनी, ये क्या था?
इसका मतलब था कि एक तरह का विश्वास कि अमेरिका का पूरे महाद्वीप में फैलना ईश्वर की इच्छा है, ये उनका हक है, भले ही इसके लिए मूल निवासियों को हटाना पड़े या फिर मेक्सिको से लड़ना पड़े। तो ये सब एक साथ चल रहा था।
बाप रे, यानी बहुत उथल पुथल का दौर था, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह से।
हाँ,
ऐसे में विचारों की दुनिया कैसी थी? आपने ट्रांसेंडेंटलिज्म का जिक्र किया था, ये क्या था असल में?
हाँ, ये उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन था, ट्रांसेंडेंटलिज्म। मोटे तौर पर समझे तो ये मानना कि सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ तर्क या बाहरी अनुभव नहीं है,
तो फिर क्या है?
अपने अंदर की आवाज सुनना, इंट्यूशन, और प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करना। वो मानते थे कि हर इंसान में और प्रकृति की हर चीज में ईश्वर का अंश है, दिव्यता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन इसके सबसे बड़े नाम थे। वो थोरो के गुरु भी बने, दोस्त भी, मार्गरेट फुलर जैसी और भी कई महत्वपूर्ण हस्तियां थीं।
और थोड़ो सिर्फ पश्चिमी विचारों तक ही सीमित नहीं थे शायद?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत दिलचस्प है। वो हिंदू ग्रंथों से जैसे वेद और भगवद गीता और बौद्ध धर्म से भी काफी प्रभावित थे, उन्होंने ये सब पढ़ा था।
अच्छा, तो इन सब विचारों के बीच थोरो का अपना सफर कैसे शुरू हुआ? उनके शुरुआती जीवन के बारे में हमें क्या पता चलता है?
हेनरी डेविड थोरो का जन्म हुआ 1817 में कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स में। एक मजे की बात बताऊं?
हाँ।
उनका असल नाम डेविड हेनरी था, बाद में उन्होंने खुद बदलकर हेनरी डेविड कर लिया।
अरे वाह, क्यों?
शायद अपनी पहचान खुद गढ़ने की एक कोशिश कह सकते हैं। परिवार ठीक ठाक था, मतलब मध्यम वर्गीय, पिता पेंसिल बनाते थे।
अच्छा।
उन्होंने 1833 से 37 तक हार्वर्ड में पढ़ाई की, क्लासिक्स, फिलॉसफी, गणित सब पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत अव्वल दर्जे के छात्र थे अकादमिक रूप से,
मतलब वो पारंपरिक रास्ते पर नहीं चले।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो हार्वर्ड के बाद क्या चीजें थी जिन्होंने उनके जीवन को एक दिशा दी, निर्णायक मोड़ क्या थे?
दो बातें खास रहीं। पहली, 1837 में एमर्सन से मुलाकात। एमर्सन ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया लिखने के लिए, अपने विचारों को गंभीरता से लेने के लिए।
गुरु मिल गए एक तरह से।
हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी और शायद सबसे मशहूर घटना, वो हुई 4 जुलाई 1845 को।
4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस।
बिल्कुल, उसी दिन वो वॉल्डन तालाब के किनारे रहने चले गए। एमर्सन की ही जमीन थी वो, उस पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर।
ये था उनका वो प्रयोग?
हाँ, यही था उनका वो मशहूर प्रयोग, समाज की भागदौड़ से दूर आत्मनिर्भर और सरल जीवन जीने का। देखना चाहते थे कि असल में जीने के लिए क्या जरूरी है।
और इसी दौरान वो जेल भी गए थे, है ना? वो किस्सा भी बहुत मशहूर है।
हाँ बिल्कुल, 1846 में वॉल्डन में रहते हुए ही उन्हें पोल टैक्स न चुकाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।
क्यों नहीं चुकाया था उन्होंने टैक्स?
क्योंकि वो अमेरिकी सरकार की दो नीतियों का विरोध कर रहे थे, एक तो दास प्रथा और दूसरा मेक्सिको के साथ जो युद्ध चल रहा था। उनका मानना था कि टैक्स देकर वो इन अन्यायपूर्ण कामों में भागीदार बन रहे हैं।
तो उन्होंने मना कर दिया?
हाँ, जेल में तो वो सिर्फ एक रात ही रहे। किसी रिश्तेदार ने शायद टैक्स भर दिया था, लेकिन उस एक रात के अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिला दिया।
और उसी से वो निबंध निकला?
बिल्कुल, उसी से प्रेरणा मिली रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट लिखने की, जिसे बाद में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा के नाम से जाना गया।
ये दिखाता है कि उनके लिए विचार सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं थे,
वो एक्शन थे।
हाँ, वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का तरीका थे।
तो उनके ये अनुभव, ये विचार उनकी किताबों में कैसे सामने आए? वॉल्डन और सविनय अवज्ञा, ये दो नाम सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। हाँ देखिए, वॉल्डन और लाइफ इन द वुड्स 1854, ये तो उनकी पहचान ही बन गई। पर ये सिर्फ जंगल में बिताए 2 साल 2 महीने 2 दिन का हिसाब किताब नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक बहुत गहरा दार्शनिक दस्तावेज है। इसमें थोरो सवाल उठाते हैं, हमें जीने के लिए असल में क्या चाहिए? क्या ये जो समाज ने जरूरतें बना दी हैं, इनकी दौड़ हमें वाकई सुखी बना रही है? वो प्रकृति को बहुत बारीकी से देखते हैं, सादगी के फायदे गिनाते हैं और अपनी आत्मा को जगाने की, मतलब आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। ये किताब आज भी लोगों को अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
और सविनय अवज्ञा, इसका इतना जबरदस्त प्रभाव कैसे हुआ? एक छोटा सा निबंध है ये तो।
छोटा है, पर इसकी चोट बहुत गहरी है। सिविल डिसोबीडियंस यानी 1849 का जो मूल तर्क था, वो अपने आप में क्रांतिकारी था। वो कहते हैं कि अगर सरकार अन्याय कर रही है या ऐसे कानून बना रही है जो आपकी अंतरात्मा के खिलाफ है,
तो
आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उसे मानने से इनकार कर दें।
सरकार को मानने से इनकार?
हाँ, उन्होंने कहा कि व्यक्ति की अंतरात्मा, उसका जमीर राज्य के कानून से ऊपर है।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात। और इसी विचार ने, जैसा हमने कहा, बाद में गांधी जी के सत्याग्रह को और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अहिंसक आंदोलनों को सीधी प्रेरणा दी।
कमाल है। तो अगर हम उनके मुख्य दार्शनिक विचारों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? क्या नींव थी इन रचनाओं की?
उनकी विचारों के केंद्र में कुछ बातें बहुत साफ दिखती हैं। पहला, सरल जीवन,
सिंपल लिविंग।
बाहरी तामझाम कम करो, जानबूझकर अपनी जरूरतें सीमित करो ताकि अंदरूनी जिंदगी बेहतर हो सके। वो पूछते हैं कि हमारी ये जो कभी ना खत्म होने वाली जरूरतें हैं, ये हमें खुशी दे रही हैं या सिर्फ एक शांत हताशा, एक क्वाइट डेस्परेशन की तरफ ले जा रही हैं।
शांत हताशा, ये उनकी मशहूर लाइन है ना?
हाँ, वॉल्डन से। दूसरा, व्यक्तिगत विवेक,
इंडिविजुअल कॉन्शियस।
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, उसे समाज या सरकार के दबाव से ऊपर रखो, अन्याय का हिस्सा बनने से साफ इनकार करो।
और तीसरा, प्रकृति।
हाँ, तीसरा, प्रकृति का महत्व, नेचर फिलॉसफी। प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं है, वो टीचर है, वो एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, समाज की सच्चाई देख सकते हैं। उनका वो मशहूर कथन है, इन वाइल्डनेस इज द प्रेजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड,
जंगलीपन में ही दुनिया का संरक्षण है।
हाँ, ये सिर्फ जंगल बचाने की बात नहीं है, ये इंसान की अपनी अंदरूनी आजादी, उसकी आत्मा को बचाने की भी बात है।
और चौथा,
आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। एमर्सन वाला ही विचार, लेकिन थोरो के अंदाज में। अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी सोच रखो, भेड़ चाल मत चलो।
ये विचार एमर्सन से काफी मिलते जुलते लगते हैं। फिर थोरो में क्या खास था? वो अलग कैसे थे?
समानताएं तो थीं ही, दोनों ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, लेकिन फर्क बड़ा था और बहुत महत्वपूर्ण था। एमर्सन ज्यादा सिद्धांतकार थे, उन्होंने विचार दिए, लिखा।
और थोरो
प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने उन विचारों को जिया, जी कर दिखाया। एमर्सन समाज में रहकर बात कर रहे थे, थोरो वॉल्डन चले गए एक वैकल्पिक जीवन का प्रयोग करने। उनका दर्शन किताबी नहीं था, वो जमीन से जुड़ा था, अनुभव पर टिका था।
तो उनका ये जो प्रयोग था, उनके जो विचार थे, इनका आगे चलकर क्या असर हुआ? क्या उनके जीते जी उन्हें पहचान मिली, सराहना हुई?
नहीं, सच कहूं तो उनके जीवन काल में उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली। वॉल्डन भी शुरू में बहुत नहीं बिकी, लोगों ने शायद समझा नहीं कि ये आदमी कह क्या रहा है।
अच्छा।
हाँ, उनकी असली पहचान बनी 20वीं सदी में, खासकर 1960 के दशक में, जब अमेरिका में सामाजिक बदलाव की बड़ी लहरें उठीं, नागरिक अधिकार आंदोलन, वियतनाम युद्ध का विरोध, पर्यावरण की चिंता, तब लोगों ने थोरो को फिर से पढ़ा, फिर से खोजा।
तब उनकी बातें प्रासंगिक लगी।
बिल्कुल, पर्यावरण आंदोलन ने उन्हें अपना गुरु माना, नागरिक अधिकार आंदोलन ने उनकी सविनय अवज्ञा में ताकत देखी, युद्ध विरोधी आंदोलनों ने उनके व्यक्तिवाद और सरकार पर सवाल उठाने के जज्बे से प्रेरणा ली।
आपने गांधी और मार्टिन लूथर किंग का जिक्र किया था।
हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव।
गांधी जी ने खुद लिखा है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने सविनय अवज्ञा पढ़ा और उसने उन पर गहरा असर डाला। सत्याग्रह के विचार को विकसित करने में इसकी भूमिका रही।
और किंग?
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी बार बार थोरो को अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन के लिए एक मुख्य प्रेरणा स्रोत बताया। ये सोचना ही कमाल है कि कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स के जंगल में रहने वाले एक अकेले आदमी के विचारों ने दुनिया के इतने बड़े आंदोलनों को राह दिखाई।
सही में,
पर्यावरण आंदोलन के लिए तो एक तरह से पितामह जैसे हैं। आज भी जो लोग मिनिमलिज्म की बात करते हैं या वॉलंटरी सिंप्लिसिटी, मतलब स्वैच्छिक सादगी की, वो भी कहीं ना कहीं थोरो के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं।
ये वाकई अद्भुत है। लेकिन क्या थोरो की आलोचना भी हुई? जाहिर है कोई भी विचारक सवालों से परे तो नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल हुई है और होती है। सबसे आम आलोचना जो लगती है वो पाखंड की है, हिपोक्रेसी।
पाखंड
किस बात का? यही कि वॉल्डन में उनका जो एकांत जीवन था वो उतना भी एकांत या आत्मनिर्भर नहीं था। वो अक्सर पास के कॉनकॉर्ड शहर जाते थे, दोस्तों से मिलते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनकी माँ और बहन उन्हें खाना और धुले कपड़े पहुँचा देती थीं।
ओह, तो आलोचक कहते हैं कि ये कैसी आत्मनिर्भरता हुई?
हाँ, यही सवाल उठता है। हालांकि उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि थोरो ने कभी ये दावा नहीं किया था कि वो कोई सन्यासी बन गए हैं या दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। उनका मकसद एक प्रयोग करना था, ये दिखाना था कि कम चीजों में भी सार्थक जीवन जिया जा सकता है, भले ही आप पूरी तरह समाज से न कटे।
और कोई आलोचना?
कुछ लोगों को उनका लहजा, उनकी भाषा थोड़ी अहंकारी या मानव विरोधी लगती है, जैसे वो बाकी इंसानों को थोड़ी हे दृष्टि से देखते हों, और उनकी जो सादगी की अपील है उसे भी कुछ लोग अव्यवहारिक मानते हैं। कहते हैं कि ये सब बातें वो आदमी कर सकता है जिसके पास हार्वर्ड की डिग्री हो और एमर्सन जैसे अमीर दोस्त हों। सबके लिए ये मुमकिन नहीं।
ये भी एक नजरिया की बात है।
सही।
अच्छा, ये तो हुई आलोचना है। उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू या तथ्य हैं जो शायद कम लोग जानते हों।
हाँ, कुछ दिलचस्प बातें हैं जरूर। जैसे वो एक बहुत कुशल सर्वेयर थे, मतलब जमीन का नाप जोक और नक्शा बनाने वाले। ये उनका एक पेशा भी था जिससे वो पैसे कमाते थे।
अरे वाह, ये नहीं पता था।
और प्रकृति प्रेमी तो थे ही। उन्होंने अपने इलाके के पेड़ पौधों का इतना गहरा अध्ययन किया कि कई नई प्रजातियों की पहचान में भी मदद की। वनस्पति विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने और उनके एक दोस्त ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी थी, कैंप फायर से।
क्या?
हाँ, और उससे करीब 300 एकड़ जंगल जल गया था। उन्हें इसका जीवन भर अफसोस रहा। ये दिखाता है कि प्रकृति प्रेम के बावजूद इनो गलतियां हो जाती हैं।
बिल्कुल।
और एक बात, वो शायद अमेरिका में सिर्फ मजे के लिए, मनोरंजन के लिए पहाड़ों पर या जंगलों में पैदल घूमने यानी हाइकिंग करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। उस जमाने में ये आम नहीं था।
अच्छा, तो सर्वेक्षक, प्रकृतिविद, अनजाने में आग लगाने वाले और हाइकर भी, काफी रंग थे उनके व्यक्तित्व में।
हाँ बिल्कुल, और वो जुनूनी डायरी लेखक थे। उनकी जो जर्नल है उसमें 20 लाख से ज्यादा शब्द है। आज हम उनके बारे में जो इतना कुछ जानते हैं उसका बड़ा हिस्सा उसी जर्नल से आता है।
20 लाख शब्द?
हाँ। तो संक्षेप में कहें तो थोरो एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी व्यक्ति थे। उन्होंने अमरीकी दर्शन को एक नया व्यवहारिक मोड़ दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, अपने विश्वासों के मुताबिक जीना भी जरूरी है। उन्होंने प्रकृति, सादगी और व्यक्तिगत विवेक की जो बात की वो आज की इस भागदौड़ भरी, उपभोक्तावादी और अक्सर अन्यायपूर्ण लगने वाली दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है।
बिल्कुल, उनकी आवाज आज भी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और असल में कैसा जीना चाहते हैं।
तो चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर हेनरी डेविड थोरो आज हमारे बीच होते तो वो हमारे समाज की किन बातों पर सबसे तीखे सवाल उठाते? हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, पर्यावरण के प्रति हमारा रवैया, हमारी राजनीति और उनकी जो सविनय अवज्ञा की धारणा थी, वो आज के इस डिजिटल विरोध और ऑनलाइन एक्टिविज्म के दौर में क्या रूप लेती? इस पर जरूर सोचिएगा। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।